ये आकाशवाणी है। अब आप गौरव राघव से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बेहतर करना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। श्री मोदी आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोडमैप है। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के करीब 12,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में विस्तारित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और यूविन पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। यह विस्तारित योजना अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सुनिश्चित करती है, जिससे उन्हें आय की बाधाओं के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिलती है। अयोध्या में आज होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हजारों दीयों से जगमगाएगा। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सरयू नदी के घाटों पर 28 लाख दीपों की व्यवस्था की गई है। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह के लिए पूरे शहर को सजाया संवारा जा रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए घाटों पर 5 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। घाटों की लगातार सफाई की जा रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के एक सलाहकार और विश्वविद्यालय की गिनती समिति के सदस्यों के नेतृत्व में 30 लोगों की एक टीम पहले ही 55 घाटों पर सजाए गए दीपों की गिनती कर चुकी है। आज रामपथ पर निकलने वाली शोभायात्रा में रामायण के 7 अध्यायों पर आधारित 18 झांकियां भी शामिल होंगी। ये झांकियां भगवान राम के पूरे जीवन काल को दर्शाएंगी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने के लिए देश विदेश से कलाकार बुलाए गए हैं। दीपोत्सव समारोह में 1100 से अधिक पुजारी भव्य सरयू आरती का हिस्सा होंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य के सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी कल शाम समाप्त हो गई। इस चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आगाह किया कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप न लगाएं। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को दे डीलर कमीशन में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही पेट्रोल और डीजल डिपो से दूरदराज के स्थानों पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर राज्य माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के निर्णय की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओएमसी के इस निर्णय का स्वागत किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। चुनाव वाले राज्यों निर्वाचन क्षेत्रों में यह निर्णय बाद में लागू किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भाषा गौरव सप्ताह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार द्वारा असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का जश्न मनाने के लिए भाषा गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है, जो राज्य भर में 3 से 9 नवंबर के बीच मनाया जाएगा। श्री शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी देते हुए असम के लोगों और असमिया प्रवासियों से असम की शास्त्रीय भाषा की स्थिति और राज्य की जीवंत भाषाई विविधता का जश्न मनाने में शामिल होने की अपील की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।